स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज से हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से तुबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसके मुख्य लेखक हैं राजा सुलेमान और मुख्य विषय है संसार की व्यर्थता। राजा सुलेमान द्वारा लिखी गई ये एक उत्तम अनुपम कृति है। अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा लेखक ही दर्शाना चाहता है कि यदि संसारिक सुख और आशीष प्राप्त करना ही उद्देश्य है तो उसका अंत असंतोष और अतृप्ति होता है। परमेश्वर का आदर करना और उसकी आज्ञा का पालन करना ही सर्वोत्तम जीवन है। तो आइए श्रोताओं, इससे पहले कि हम आज के इस अध्ययन में सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा नाम।
आए तूफान हमको छू ना सके। मेरा, तेरे बिना जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं, क्योंकि तू ही अल्फा और तू ही ओमेगा, तू ही शुरू और तू ही अंत।
तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार, तू जो हमारा है जहाँ से भी प्यारा है, पवित्र है तेरा
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और मुझे आशा है कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम बाइबल में से सबोपदेशक नामक पुस्तक का अध्ययन आज हम आरंभ करेंगे और आज इसके हम परिचय को देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सच्चे वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। आज जब हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करते हैं, सबोपदेशक की हमारी विनती है कि इस पुस्तक के द्वारा से आप हम में से हर एक के जीवन से बोले और बातचीत करें। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि हर एक जीवन इस अध्ययन के द्वारा से अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सके। आज के समय को हम में से प्रत्येक को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, सबोपदेशक की पुस्तक का लेखक सुलेमान है। रूढ़िवादी टीकाकारों का यही मानना है और इसके अतिरिक्त अन्य कोई तार्किक व्याख्या नहीं है। नीति वचन और श्रेष्ठ गीत का लेखक भी सुलेमान ही है। नीति वचन और सबोपदेशक की पुस्तकों में आसमान जमीन का अंतर है। नीति वचन की पुस्तक में सुलेमान के बुद्धि के वचन है तो सबोपदेशक में उसकी मूर्खता भरी है। यह उसकी नाटकीय जीवनी है जब वह परमेश्वर से दूर हो गया था। सबोपदेशक का अर्थ है शिक्षक या दार्शनिक। मैं दार्शनिक शब्द को अधिक पसंद करता हूं क्योंकि इसमें भ्रम की गुंजाइश कम है। किसी भी पुस्तक को समझने के लिए लेखक के उद्देश्य को समझना आवश्यक है, अतः हमें पीछे हटकर इस पुस्तक के सर्वांग आपेक्षिक महत्व को समझना होगा। हमें परमेश्वर के वचन का सूक्ष्म परीक्षण करने से पूर्व आवश्यक है कि उसका परिदृश्य हम समझें। इसकी आवश्यकता बाइबल की किसी भी पुस्तक से अधिक सबोपदेशक की पुस्तक के लिए अनिवार्य है। मेरे प्रियो, यह पुस्तक परमेश्वर से अलग मनुष्य के दार्शनिक विचार हैं और मनुष्य का निष्कर्ष सदा वही होता है जो इस पुस्तक का है। हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है क्योंकि इसमें कुछ विचार बाइबल के विचारों से मेल नहीं खाते हैं। यह पुस्तक नास्तिकों की अति प्रिय पुस्तक है और उन्होंने इसमें से अनेक संदर्भ काम में लिए हैं। उदाहरण के लिए वाल्टेर, आज भी इसका वृहत उपयोग है और अनेक धार्मिक पंथ इसका संदर्भ रहित उपयोग करते हैं जो वास्तव में अर्थहीन है। मनुष्य परमेश्वर के बिना हर्ष की खोज में है। लाखों लोग प्रतिदिन इस प्रयास में लगे रहते हैं। यह पुस्तक ऐसे प्रयास की निस्सारता को प्रकट करती है। सुलेमान मनुष्यों में सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे परमेश्वर ने अपार बुद्धि दी थी। उसने मनुष्य के ज्ञान की सीमा में प्रत्येक क्षेत्र में खोज की थी और उसका निष्कर्ष था, सब व्यर्थ है। जीवन में संतोष पाना इन प्रयासों द्वारा असंभव है, अर्थात मनुष्यों के प्रयास के द्वारा। परमेश्वर ने अय्यूब जैसे धर्मी जन पर यह प्रकट किया था कि वह एक पापी व्यक्ति है। सबोपदेशक की पुस्तक में परमेश्वर सुलेमान पर प्रकट करता है कि उसकी दृष्टि में वह मूर्ख है। इस पुस्तक से बड़े बड़े विद्वान एक महान सबक सीख सकते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि की पराकाष्ठा में यदि नया जीवन ना पाए तो वह परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख ही है। मेरे मित्रों, बुद्धि को महत्व देने वालों के लिए यह तथ्य अंतर्ग्रहण करना कठिन है, क्योंकि वे सांसारिक ज्ञान और जानकारियों को अधिक बड़ा समझते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक में हम सीखते हैं कि हम प्रभु यीशु के बिना संतोष नहीं पा सकते। चाहे मनुष्य संपूर्ण संसार को प्राप्त कर ले, सांसारिक उपलब्धियां मन को संतोष प्रदान नहीं कर सकती हैं, क्योंकि मन इसके लिए बहुत बड़ा है। श्रेष्ठ गीत में हम देखेंगे कि संसार से विमुख होकर प्रभु यीशु में मन लगाने पर हमें यह बोध होगा कि उसके प्रेम की गहराई अथाह है और वह हमारे मन के लिए बहुत बड़ा है। इस पुस्तक का मुख्य शब्द है व्यर्थ, जो इस पुस्तक में 37 बार काम में लिया गया है, और मुख्य वाक्यांश हैं सूर्य के नीचे, जो 29 बार प्रकट होता है। एक और वाक्य है मैंने मन में कहा, अर्थात इस पुस्तक में मनुष्य के मन का मनन व्यक्त है। इस पुस्तक में मनुष्य की बुद्धि और प्रयोगों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष हैं। यद्यपि सुलेमान के निष्कर्ष आत्मा प्रेरित नहीं है, धर्मशास्त्र जिसमें उसके निष्कर्ष व्यक्त किए गए हैं वह आत्मा प्रेरित है। तो मेरे प्रियो, आइए अब हम आगे बढ़ते हुए अध्याय 1 में आते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक सुलेमान की जीवनी है जब वह परमेश्वर से दूर हो गया था। नीति वचनों में तो सुलेमान की बुद्धि प्रकट है, परंतु सबोपदेशक की पुस्तक में उसकी मूर्खता प्रकट है। यह पुस्तक तर्क रहित विचारों का संकल्प नहीं है। इसका आरंभ एक समस्या से होता है, सब कुछ व्यर्थ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुलेमान कुछ प्रयोग करता है जो विभिन्न क्षेत्रों में संतोष की खोज है। विज्ञान, प्रकृति के नियम, बुद्धि, दर्शन शास्त्र, भोग विलास और भौतिकवाद। वह वर्तमान ही के लिए भी जी कर देखता है। वह भाग्यवाद, स्वार्थवाद, धर्म, धन धान्य तथा नैतिकतावाद में भी खोज करता है, और पुस्तक के अंतिम पद में वह हमें अपना निष्कर्ष सुनाता है। स्मरण रखें कि यहाँ प्रत्येक प्रयोग मानवीय प्रयास हैं जो परमेश्वर से रहित हैं। यह परमेश्वर का सत्य नहीं है, यह सूर्य के नीचे मनुष्य का है। हम कहते हैं कि बाइबल परमेश्वर का प्रेरित वचन है। इसका अर्थ यह नहीं कि जो विचार व्यक्त किया गया है वह आत्मा प्रेरित है। वचन आत्मा प्रेरित है। हमें संदर्भ देखना चाहिए और किसने किस परिस्थिति में क्या कहा उस पर ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए यहूदा के विश्वासघात की घटना बाइबल में है। वह घटना परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। यहूदा का विश्वासघात परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं था, वह तो शैतान का काम था। इसी प्रकार सुलेमान परमेश्वर से रहित खोज करके लिखता है तो उसकी बातें परमेश्वर प्रेरित नहीं है, परंतु उसने जो निष्कर्ष निकाले वे परमेश्वर की प्रेरणा से लिखे गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे समस्या की अभिव्यक्ति। सबोपदेशक की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। यह विवरण सुलेमान की अपेक्षा किसी और का नहीं हो सकता। दाऊद के अन्य पुत्र भी थे, परंतु यरूशलेम में केवल सुलेमान ही राजा हुआ था। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उसे अपरंपार बुद्धि भी दी थी। वही सबोपदेशक है। मेरे विचार में सुलेमान को जो बुद्धि परमेश्वर ने दी थी वह हमारी समझ से भिन्न है। हम सोचते हैं कि उसे परमेश्वर ने आत्मिक अंतर्दृष्टि प्रदान की थी। धर्मशास्त्र में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि उसने आत्मिक दृष्टि की कामना की थी। पहला राजा की पुस्तक 3:9 में वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे परमेश्वर की प्रजा का न्याय करने के लिए समझ दिया जाए, कि वह भले और बुरे में अंतर कर पाए। अतः परमेश्वर ने उसे मनुष्य का न्याय करने की बुद्धि दी। वह राजनीति में बेजोड़ था और देश के प्रशासन में उसने अद्भुत काम किया। उसने शांति स्थापित की और अन्य देश उसकी बुद्धि को देखने और सीखने और सुनने के लिए आते थे। उसने मंदिर की पाबली की वेदी के द्वारा परमेश्वर की गवाही दी। शीबा की रानी ने दूर देश से आकर यही देखा था। आत्मिक ज्ञान के क्षेत्र में सुलेमान संभवतः शून्य था। अब हम सुलेमान को परमेश्वर से अलग सूर्य के नीचे नाना प्रकार के प्रयोग करते हुए देखेंगे, जो परमेश्वर की धन्य संतान के कार्यों से सर्वथा भिन्न है। इफिसियों की पत्री 1:3 में पौलुस कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। यह पौलुस का कथन है। तब हम आगे देखते हैं सबोपदेशक की पुस्तक 1:2 में उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ध्यान दीजिए, सब कुछ व्यर्थ है, अर्थात निसार है, निरुद्देश्य, लक्ष्य रहित जीवन, पशु का सा जीवन। मैं एक बार एक स्थान पर गया हुआ था और वहां पर मैंने देखा कि बहुत सारे पर्यटक वहां पर आते हैं जो संपूर्ण विश्व का भ्रमण करने को निकले हैं। वे एक दूसरे से भोजन पर या लिफ्ट में आते जाते समय बातें करते हैं। उनके बारे में मैंने एक बात देखी कि उनके जीवन कैसे निरुद्देश्य हैं। वे विभिन्न स्थानों पर मिलने वाले लोगों के विषय चर्चा करते हैं, जो नाटक उन्होंने देखे उनकी चर्चा करते हैं। वे पूछते हैं, अब आप कहाँ जाएंगे? कोई यह भी कहता है, पिछले साल तो हम वास्तव में बोर हो गए थे। उनके जीवन में ना तो लक्ष्य है और ना कोई उद्देश्य है। सुलेमान का निष्कर्ष भी यही था, सब कुछ व्यर्थ है। धमाका तो हुआ था परंतु कुछ भी नहीं निकला। नीति वचन में सुलेमान हमें बुद्धि के नगीने देता है और सबोपदेशक की पुस्तक में वह मूर्खता की बूंदे टपकाता है। श्रेष्ठ गीत में का विषय प्रेम है, बुद्धि, मूर्खता और प्रेम। सुलेमान तीनों क्षेत्र में विशेषज्ञ था। वह जानता था कि मूर्खता कैसे करें, देश का शासन कैसे चलाएं और प्रेमालाप कैसे करें। यद्यपि सुलेमान सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य था, वह मूर्खता में भी किसी से कम नहीं था। वह प्रकाशन की पहली है तो धर्मशास्त्र का आत्मविरोधी भी है। महाबुद्धिमान मनुष्य महामूर्ख था। सबोपदेशक की पुस्तक इसका अनावरण करेगी। हम पढ़ते हैं, सब कुछ व्यर्थ है। यह सूर्य के नीचे मनुष्य का विचार है। वह जीवन में कुछ भी पाना चाहता है। मैं मनुष्यों की एक और श्रेणी को देखता हूं। ये लोग मौज मस्ती वाले लोग हैं। वे पीते हैं, भोज करते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं, परंतु उनके जीवन में कड़वाहट भरी होती है। उनके जीवन के कटोरों में तलछट हैं। अब हम देखेंगे कि वह इस सांसारिक जीवन की चट्टानों से जीवन का रस निकालने का प्रयोग करता है। आइए आप मेरे साथ पढ़िए सबोपदेशक की पुस्तक एक अध्याय उसका 3 पद। लिखा है, उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। स्मरण रखें, यह सूर्य के नीचे है अर्थात आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के द्वारा काम हो रहे हैं। मनुष्य का दृष्टिकोण है परमेश्वर का नहीं। अब हम देखेंगे प्रयोग करना। संपूर्ण पुस्तक उसके प्रयोगों से ही भरी है। अध्याय 1 उसके 4 पद से 12 अध्याय के 2 पद तक उसका पहला प्रयोग विज्ञान है, प्रकृति के नियमों का। आज मनुष्य प्रकृति के नियमों का अध्ययन करने में पूरा जीवन लगा देता है। प्रकृति के नियम प्रकट करने में यह पुस्तक एक अद्भुत कृति है। हम देखेंगे विज्ञान, जिसके बारे में सबोपदेशक का लेखक सुलेमान कहता है। सबोपदेशक 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है, एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है, उसमें स्थिरता है। मनुष्य में स्थिरता नहीं है क्योंकि वह अस्थाई है। प्राचीन मानव, आज का मानव और भविष्य का मानव एक दूसरे से भिन्न होंगे, परंतु तीनों के विषय सच हैं कि वह अस्थाई हैं। मनुष्य जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह कल नहीं होगा। चाहे मानव जाति पीढ़ी से पीढ़ी चलती रहे, मनुष्य अस्थाई है। सुलेमान ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है, परमेश्वर की सृष्टि में मनुष्य वैश्विक विफलता का पुतला है। उसका इस पृथ्वी पर रहना कुछ ही समय का है। कुछ अति प्राचीन वृक्ष हैं, प्रभु यीशु के समय से ही हैं, परंतु उनसे भी पुरानी चट्टाने हैं। भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि वे लाखों वर्ष पुरानी है। पृथ्वी कितनी पुरानी है कोई नहीं जानता। वह मनुष्य से पहले की है और मनुष्य के बाद भी रहेगी। मेरे मित्रों, यह निराशा और निरुत्साह की बात है। मनुष्य जो सोचता है वह है नहीं। अब हम अद्भुत बातें सुनेंगे। सुलेमान ने प्रकृति का अध्ययन किया और बहुत ज्ञान ग्रहण भी कर लिया। आज यह विज्ञान के आधार पर मूलभूत तथ्य है। यह एक अति रोचक बात है कि ये यथार्थ अवलोकन सुलेमान के हैं। डॉक्टर आर्थर टी पियर्सन कहते हैं, बाइबल में विज्ञान की संदेह रहित घोषणा के शब्दों को रखना संकट उत्पन्न करता है, परंतु निसंदेह सुलेमान द्वारा भावीकरण और आंधी की लहरों की भाषा को काम में लेना एक जिज्ञासापूर्ण तथ्य है। किसी ने साहसपूर्वक कहा है कि रेडफील्ड का आंधी उठने का सिद्धांत यहां स्पष्ट व्यक्त किया गया है। हम पूछते हैं कि सुलेमान को किसने ये शब्द सिखाए जो अनियमित हवा और अनिश्चित आंधी के तथ्यों को प्रकट करते हैं, और यह कि समुद्र का जल भाप बनकर वर्षा करता है और वर्षा का पानी नदियों द्वारा समुद्र में जाने पर भी समुद्र अपनी सीमा पार नहीं करता है। हम सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय उसके 6 पद में देखते हैं कि अत्यधिक काव्य अभिव्यक्ति है, जैसे चांदी का तार रीढ़ की हड्डी है, सोने का कटोरा खोपड़ी, घड़ा फेफड़े, रहर दिल। सुलेमान से हार्वे से 26 शताब्दी पूर्व रक्त प्रवाह प्रणाली की व्याख्या की है। यह बड़ी अद्भुत बात है कि उसकी भाषा वैज्ञानिक तथ्य प्रकट करती है। रहट एक नाली से जल लेकर दूसरी नाली से निकालता है। मेरे मित्रों, आज हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग हैं जो अपने आप को सुलेमान की तरह जांच परख करने के बाद व्यर्थ और व्यर्थ कहते हैं, परंतु वे परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं देते। आज हम अपने जीवन में देखें कि जो कुछ हम करते हैं हमारे विनाश के ही होते हैं। इससे हमें आत्मिक लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य आज है और कल नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि इस पुस्तक के इस आरंभ के अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही आत्मिक जीवन में लाभ प्राप्त किया है। आने वाले अध्ययन में और भी हम देखेंगे कि किस प्रकार सुलेमान इस पुस्तक का लेखक हमें ज्ञान की बातों को बताता है और क्यों वो कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है। मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन को जांच करके देखें और परमेश्वर की निकटता में लाएं और प्रभु से प्रार्थना करें और मांगें कि वह हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे ताकि हम सही बातों को चुन सकें। आइए आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हमारे दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा से प्रभु आप हमें सिखा रहे हैं। सबोपदेशक की पुस्तक से हमने इस बात को सीखा है कि हम इस पृथ्वी पर मनुष्य हैं, हमारे सोच विचार सब कुछ पृथ्वी पर रह जाएंगे, लेकिन आज हमारी प्रार्थना है कि आप हम सबों को ऐसी बुद्धि, ज्ञान और समझ दे ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकें, इस बात को समझ सकें कि इस पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है, लेकिन इस बात को हम जान सकें कि आपकी निकटता में हर एक प्रकार की आशीष और प्रेम और शांति है। हमारे जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं अपने जीवन में निराश हैं, पिताजी आप उन्हें भी शांति प्रदान कीजिए। हमारे हरेक श्रोता भाई बहनों पर अपनी अनुग्रह प्रदान कीजिए। आज के इस अध्ययन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में फिर से नई बातों को सीखने में आप हम सबकी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
हम तो जल जल्द।